एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया जा रहा है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम इंसानियत के शायद सबसे पुराने, सबसे शक्तिशाली और जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है, उस एक विचार की गहराई में उतरने वाले हैं, ईश्वर का विचार।
बिल्कुल, और इसके लिए हम जॉन बुकर की किताब गॉड अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन का सहारा ले रही हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर का ये ख्याल आखिर मतलब इंसानी दिमाग में आया कहाँ से
और हजारों सालों में ये कैसे बदला।
हाँ, और आज की इस वैज्ञानिक और मॉडर्न दुनिया में भी ये इतना असरदार क्यों बना हुआ है।
और यहाँ एक बात शुरू में ही साफ कर देना जरूरी है, है ना?
जी बिल्कुल,
हमारा मकसद किसी भी धर्म को सही या गलत ठहराना नहीं है। हम तो यहाँ एक तरह से एक जासूस की तरह इस विचार के इतिहास को खंगालने आए हैं।
सही कहा, ये देखने के लिए कि इस एक कॉन्सेप्ट ने हमारी कला, राजनीति, समाज और यहाँ तक कि हमारे सोचने के तरीके को कैसे गढ़ा है।
बिल्कुल, आज जब एक तरफ दुनिया में धार्मिक टकराव की खबरें आती हैं और दूसरी तरफ बहुत से लोग धर्म से दूर हो रहे हैं,
तब ये समझना और भी दिलचस्प हो जाता है
कि आखिर इंसान ईश्वर के बारे में सोचता ही क्यों है।
ये सवाल आज भी उतना ही ताजा है जितना शायद हजारों साल पहले था।
तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे गाइड यानी इस किताब के लेखक जॉन बुकर से। उनका नजरिया इस विषय पर बहुत ही अनोखा है ना?
हाँ, बहुत अनोखा। जॉन बुकर कोई मतलब आम एकेडमिक नहीं है। सोचिए, एक ही व्यक्ति कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में धर्म का एक बहुत बड़ा विद्वान भी है और साथ ही चर्च ऑफ इंग्लैंड का एक पुजारी भी। ये कॉम्बिनेशन बहुत दुर्लभ है।
अच्छा, मतलब वो इस विषय को दो अलग अलग नजरियों से देख सकते हैं।
जी,
एक तरफ एक स्कॉलर का अनुशासन जो सबूत और तर्क पर जोर देता है, और दूसरी तरफ एक आस्थावान व्यक्ति का अनुभव जो विश्वास और भावना को समझता है। ये तो कमाल का संतुलन है।
बिल्कुल, और उनकी विशेषज्ञता सिर्फ ईसाई धर्म तक ही सीमित नहीं है। वो संस्कृत, अरबी और हिब्रू जैसी कई प्राचीन भाषाएं जानती हैं।
तो इसका फायदा क्या होता है?
फायदा ये है कि वो धार्मिक ग्रंथों को किसी अनुवाद में नहीं बल्कि उनकी असली भाषा और असली भावना में समझ पाती हैं।
तो वो रिसर्च करते वक्त अपना वो पुजारी वाला चोला उतार देते होंगे?
एक तरह से हाँ, वो जिसे मेथडोलॉजिकल एग्नोस्टिसिज्म कहती हैं उसका पालन करती हैं। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है पर इसका मतलब आसान है।
बताइए।
इसका मतलब है कि अध्ययन करते समय वो इस सवाल पर कोई स्टैंड नहीं लेती कि ईश्वर है या नहीं। वो किसी धार्मिक दावे को सच या झूठ मानकर नहीं चलती बल्कि उसे एक इंसानी घटना, एक अनुभव के रूप में स्टडी करती हैं।
मतलब वो पूछते हैं कि लोगों ने ऐसा क्यों माना, इस मानने का उनकी जिंदगी पर क्या असर हुआ।
एकदम।
तो किताब का मुख्य आइडिया क्या है? क्या ये ईश्वर के होने या ना होने का कोई फैसला सुनाती है?
बिल्कुल नहीं। बुकर की किताब का सबसे बड़ा और केंद्रीय आइडिया यही है कि ईश्वर की अवधारणा कोई पत्थर की लकीर नहीं है जो हमेशा से एक जैसी रही हो।
अच्छा।
बल्कि ये इंसानी सवालों का एक लगातार विकसित होता हुआ जवाब है। ये किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि एक विश्वास की जीवनी है।
विश्वास की जीवनी, ये सुनने में बहुत दिलचस्प है। कैसे सवाल, क्या मतलब है इसका?
वही सवाल जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। हम कहाँ से आए, इस जिंदगी का मतलब क्या है, दुनिया में इतना दुख और पीड़ा क्यों है, मौत के बाद क्या होता है।
गहरे सवाल हैं ये तो।
बहुत। बुकर कहती हैं कि ईश्वर का विचार इन बड़े और मुश्किल सवालों से जूझने की, उन्हें एक कहानी और एक मतलब देने की इंसानी कोशिश का नतीजा है, और ये विचार समय और समाज के साथ लगातार बदलता रहा है।
ठीक है, तो चलिए इस विश्वास की जीवनी के पन्ने एक एक करके पलटते हैं। ये कहानी शुरू कहां से होती है? क्या इंसान हमेशा से किसी ईश्वर को मानता आया है?
बुकर इसकी जड़ें हमारे दिमागी विकास यानी एवोल्यूशन में खोजती हैं। वो एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट की बात करती हैं, एजेंसी डिटेक्शन।
एजेंसी डिटेक्शन, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगी?
जरूर। इसका मतलब है अनजान घटनाओं के पीछे किसी इरादे या किसी करने वाले यानी एजेंट को देखने की हमारी स्वाभाविक आदत। सोचिए, हमारे पूर्वज जंगल में हैं, झाड़ियों में सरसराहट होती है। उनके पास दो ऑप्शन हैं, या तो सोचें कि ये सिर्फ हवा है या सोचें कि कोई शिकारी जानवर छिपा है।
जाहिर है, ये सोचना ज्यादा सुरक्षित है कि वहाँ कोई जानवर है। अगर हवा निकली तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर जानवर निकला और उसे हवा समझ लिया तो जान जा सकती है। बिल्कुल,
यही एजेंसी डिटेक्शन है, ये जिंदा रहने का एक तरीका था। बुकर का तर्क है कि इसी दिमागी आदत ने धीरे धीरे आत्माओं, मतलब एनिमिज्म और अनदेखी शक्तियों में विश्वास को जन्म दिया।
अच्छा,
जब बिजली कड़कती तो उसे सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि किसी नाराज देवता का गुस्सा माना गया। जब फसल अच्छी होती तो उसे किसी खुश देवी का आशीर्वाद समझा गया।
तो ये एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म था, डर और दुनिया को समझने की आदिम कोशिश।
हाँ,
लेकिन सिर्फ अनजान शक्तियों से आगे बढ़कर इंसानों ने बाकायदा देवताओं का एक पूरा परिवार कैसे बना लिया, जैसे हम ग्रीक माइथोलॉजी में देखते हैं, ज्यूस, हेरा, अपोलो, सबके अपने अपने डिपार्टमेंट थे।
बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब हमारे सामाजिक विकास में छुपा है। जैसे जैसे इंसान छोटे कबीलों से निकलकर बड़े शहर, राज्य और साम्राज्य बनाने लगा, उसका समाज और जटिल होता गया।
कामों का बंटवारा होने लगा।
हाँ, कोई सैनिक, कोई किसान, कोई राजा। बोकर बताते हैं कि ठीक यही बंटवारा देवताओं की दुनिया में भी दिखने लगा। इसे ही बहुदेववाद यानी पॉलीथीज़म कहते हैं।
मतलब जैसा समाज वैसे देवता।
एकदम। मिस्र, मेसोपोटामिया, ग्रीस और हमारे अपने सिंधु घाटी और वैदिक काल में भी यही दिखता है। युद्ध के लिए अलग देवता, खेती और बारिश के लिए अलग, ज्ञान और कला के लिए अलग देवी। ये दुनिया को व्यवस्थित करने का एक तरीका था।
हर जरूरत के लिए एक स्पेशलिस्ट देवता मौजूद था।
बिल्कुल।
और फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। हजारों देवताओं की भीड़ से निकलकर सिर्फ एक ईश्वर का विचार, एकेश्वरवाद। ये तो एक वैचारिक भूकंप जैसा रहा होगा।
ये वाकई एक भूकंप था। बोकर इस बदलाव को बहुत खूबसूरती से समझाती हैं। वो इसराइल के कबीलाई देवता याहवे का उदाहरण देती हैं। शुरुआत में याहवे सिर्फ उनके कबीले के एक योद्धा देवता थे
जो दूसरे कबीलों के देवताओं से लड़ते थे।
हाँ, लेकिन धीरे धीरे सदियों के दौरान उनके अनुयायियों ने ये मानना शुरू कर दिया कि उनका देवता ही एकमात्र सच्चा ईश्वर है और बाकी सब झूठे हैं। इस तरह एक स्थानीय देवता धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र निर्माता और शासक बन गया।
और यही विचार फिर ईसाई धर्म और इस्लाम में और मजबूत हुआ।
हाँ, ईसाई धर्म ने ट्रिनिटी यानी त्रिमूर्ति की एक जटिल लेकिन शक्तिशाली अवधारणा दी, जिसमें एक ही ईश्वर तीन रूपों में है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और इस्लाम ने तौहीद के सिद्धांत के जरिए ईश्वर के एक और अविभाज्य होने पर सबसे ज्यादा जोर दिया।
ये एकेश्वरवाद का चरम था।
बिल्कुल। इस एक विचार ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया।
लेकिन ये सब तो विश्वास की दुनिया थी। क्या हुआ जब तर्क और दर्शन ने इस विचार पर सवाल उठाने शुरू किए? मुझे लगता है असली टकराव तो वहीं से शुरू हुआ होगा।
बिल्कुल। ये इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। बोकर हमें प्राचीन ग्रीस ले जाती हैं। प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने देवताओं की कहानियों से हटकर तर्क के आधार पर ईश्वर को समझने की कोशिश की। उनके लिए ईश्वर कोई इंसान जैसा गुस्सा करने या खुश होने वाला देवता नहीं था।
तो फिर क्या था?
अरस्तु के लिए ईश्वर प्राइम मूवर था, मतलब वो पहली शक्ति जिसने इस ब्रह्मांड को गति दी, लेकिन खुद गतिहीन है। प्लेटो के लिए ईश्वर अच्छाई का परम आदर्श था। ये एक बहुत ही अमूर्त, एक इंटेलेक्चुअल विचार था।
और बाद में ईसाई विचारकों ने इसी फिलॉसफी को धर्म से जोड़ने की कोशिश की।
हाँ, थॉमस एक्विनास जैसे विचारकों ने ग्रीक दर्शन के इस तर्क को अपनी धार्मिक मान्यताओं के साथ मिलाने की एक जबरदस्त कोशिश की। ये आस्था और तर्क को एक साथ लाने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था।
और फिर आया विज्ञान का दौर। डार्विन, फ्रॉयड, इन्होंने तो इस विचार की नींव पर ही हमला कर दिया।
सही कहा। डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत ने इस कहानी को सीधी चुनौती दी। वो जो कहानी थी कि ईश्वर ने हर जीव को एक एक करके बनाया है, डार्विन ने दिखाया कि जीवन लाखों सालों में धीरे धीरे विकसित हुआ है।
और फ्रॉयड, उन्होंने क्या कहा?
सिगमंड फ्रॉयड जैसे मनोवैज्ञानिकों ने एक और गहरा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ईश्वर कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि हमारे अपने मन की एक उपज है।
मन की उपज मतलब?
फ्रॉयड का मानना था कि बचपन में हम अपने पिता को सर्वशक्तिमान समझते हैं, जो हमारी रक्षा करता है। जब हम बड़े होते हैं और दुनिया की मुश्किलों का सामना करते हैं, तो हम उसी शक्तिशाली पिता की छवि को आसमान में प्रोजेक्ट कर देते हैं और उसे ईश्वर कहते हैं, ताकि हम असहाय महसूस ना करें। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक सहारा है।
इन सब चुनौतियों के बाद तो ईश्वर के विचार को खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
नहीं हुआ, बल्कि 20वीं सदी ने एक और भयानक सवाल खड़ा किया। होलोकॉस्ट जैसी घटनाएं, दो विश्व युद्धों की हिंसा ने पूछा, अगर एक सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर है तो वो दुनिया में इतनी भयानक पीड़ा क्यों होने देता है।
इसे ईश्वर और बुराई की समस्या कहते हैं ना?
जी, अ प्रॉब्लम ऑफ ईविल। इन तमाम हमलों के बावजूद ईश्वर का विचार मरा नहीं, उसने खुद को फिर से ढाला।
तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें तो कुछ बड़े संदेश या थीम उभर कर आते हैं। मुझे जो पहला समझ आ रहा है वो ये है कि ईश्वर का विचार कभी स्थिर नहीं रहा, ये हमेशा बदलता रहा है।
बिल्कुल, ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण विषय है, ईश्वर के विचार का विकास। ये कोई आसमान से उतरा हुआ फिक्स्ड आइडिया नहीं है, बल्कि ये इंसानी समाज, ज्ञान और जरूरतों के साथ लगातार विकसित हुआ है।
अनदेखी आत्माओं से लेकर देवताओं के परिवार तक,
और फिर एक अकेले ब्रह्मांडीय शासक तक।
दूसरा विषय जो मुझे दिख रहा है वो है आस्था और तर्क के बीच का रिश्ता। इसे अक्सर एक लड़ाई के तौर पर देखा जाता है, लेकिन बोकर दिखाते हैं कि यह एक लंबा और जटिल संवाद रहा है।
एकदम से। दूसरा विषय, आस्था और तर्क के बीच का तनाव और संवाद। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ग्रीक फिलॉसफी ने ईसाई धर्म को प्रभावित किया और बाद में वैज्ञानिक खोजों ने भी धार्मिक सोच को बदलने पर मजबूर किया। इस संवाद ने दोनों को बदला है।
और तीसरा जो मुझे सबसे हैरान करता है वो है इस विचार का लचीलापन। इतनी आलोचनाओं और चुनौतियों के बावजूद भी ये खत्म क्यों नहीं हुआ?
ये है तीसरा विषय, इस विचार की जबरदस्त अनुकूलन क्षमता यानी फ्लेक्सिबिलिटी। जब विज्ञान ने चुनौती दी तो कई लोगों ने धर्म छोड़ दिया, लेकिन कईयों ने अपने विश्वास को एडजस्ट कर लिया।
जैसे?
जैसे आज बहुत से लोग मानते हैं कि डार्विन का विकासवाद ईश्वर के निर्माण का तरीका है, न कि उसका खंडन। ये भारत जैसे देश में तो बहुत साफ दिखता है कि नहीं, जहाँ हजारों साल पुरानी आस्थाएं आज भी मॉडर्न जिंदगी के साथ साथ जिंदा हैं।
बोहा की किताब में कुछ बातें ऐसी हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं। जैसे एक जगह वो कहते हैं, धार्मिक भाषा असकल विज्ञान नहीं बल्कि परम सत्य की कविता है। ये बहुत गहरी बात है।
हाँ, और ये बहुत जरूरी भी है। इसका मतलब है कि जब धार्मिक ग्रंथ दुनिया के बारे में कुछ कहते हैं तो उनका मकसद वैज्ञानिक तथ्य बताना नहीं होता।
मतलब जब बाइबल या वेद कहते हैं कि दुनिया 7 दिनों में बनी
तो उसे एक साइंटिफिक टाइमलाइन की तरह नहीं देखना चाहिए।
बिल्कुल, उसे एक काव्यात्मक रचना की तरह देखना चाहिए जो सृष्टि के चमत्कार को दर्शाती है। ये सच को बताने का एक अलग तरीका है, प्रतीकों और रूपकों के जरिए।
एक और विचार है जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। सवाल ये नहीं है कि ईश्वर है या नहीं, बल्कि ये है कि ईश्वर के विचार ने इंसानी जीवन और संस्कृति पर क्या असर डाला है। ये पूरी बहस का फोकस ही बदल देता है ना? ये हमें कौन सही कौन गलत की अनफीन लड़ाई से निकालकर इसका प्रभाव क्या हुआ कि समझ पर ले आता है। इसने हमें महान कला दी, संगीत दिया, लेकिन इसी के नाम पर भयानक युद्ध भी हुए।
ये हमें एक ज्यादा संतुलित नजरिया देता है।
हाँ।
और एक आखिरी बात जो शायद आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है। बोकर कहते हैं कि दुनिया में इतने सारे अलग अलग धर्मों का होना इस बात का सबूत नहीं है कि वे सब झूठे हैं, बल्कि ये इंसानी आध्यात्मिक अनुभव की समृद्धि और विविधता को दिखाता है।
बिल्कुल, ये हमें सिखाता है कि अलग अलग संस्कृतियों ने जिंदगी के बड़े सवालों के अपने अपने अनोखे जवाब खोजे हैं।
तो सवाल ये उठता है कि इस सारी जानकारी का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या काम, हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा फायदा अंतरधार्मिक समझ यानी इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देना है। जब हम ये समझते हैं कि हर धर्म एक खास ऐतिहासिक सफर का नतीजा है, तो हम दूसरे धर्मों के लोगों के प्रति ज्यादा सहानुभूति रख पाते हैं।
हम उनके रीति रिवाजों को अजीब या गलत कहने की बजाय ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनके पीछे की सोच क्या है।
सही कहा।
और ये हमें आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग भी सिखाता है। जब कोई धार्मिक या राजनीतिक नेता धर्म के नाम पर कोई दावा करता है तो हम आंख मूंद कर उसे मान नहीं लेते। हम पूछ सकते हैं, इस विचार का इतिहास क्या है
और इसका इस्तेमाल किस मकसद से किया जा रहा है। ये हमें बहकावे में आने से बचाता है। और मैं इसमें एक और चीज जोड़ना चाहूंगी, ये एक तरह की सांस्कृतिक साक्षरता है, कल्चरल लिटरेसी।
इसे थोड़ा समझाइए।
आज की दुनिया में आप वैश्विक राजनीति, कला या साहित्य को तब तक पूरी तरह नहीं समझ सकते जब तक आप उनके पीछे की धार्मिक प्रेरणाओं को न जाने, चाहे वो मध्य पूर्व का संघर्ष हो या यूरोप के बड़े बड़े चर्च। उनके पीछे ईश्वर के विचार की एक लंबी कहानी छिपी है।
इस पूरी चर्चा से मेरे लिए जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि ईश्वर की कहानी असल में कोई ऊपर आसमान की कहानी नहीं है, ये जमीन की यानी हम इंसानों की कहानी है। ये अर्थ और मतलब की तलाश में इंसानियत की कहानी है। ये हमसे, हमारी उम्मीदों और हमारे डरों से गहराई से जुड़ी हुई है।
मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जॉन बोकर का काम हमें यही सिखाता है कि कोई ईश्वर को माने या न माने, इस विचार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसी ताकत है जिसने हमारी दुनिया को बनाया भी और बिगाड़ा भी है और आज भी इसे चला रही है।
और शायद हम अपने श्रोताओं के लिए सोचने वाला सवाल छोड़ सकते हैं।
जरूर। सवाल ये है कि आज के इस आधुनिक सेक्युलर दुनिया में हमारे नए ईश्वर कौन हैं? वे कौन से परम विचार हैं जिनके लिए हम जीते और मरते हैं?
क्या वो विज्ञान है या राष्ट्रवाद या पैसा
या फिर मानवतावाद? वे कौन सी बड़ी कहानियां हैं जो आज हमारे समाजों को चला रही हैं? मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।